ये आकाशवाणी है। अब आप भवतारिणी से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन की ब्रुनेई और सिंगापुर यात्रा पर रवाना होंगे। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रुनेई की पहली यात्रा होगी। प्रधानमंत्री की ये यात्रा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के निमंत्रण पर बुधवार को सिंगापुर पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल किसानों के जीवन में सुधार और उनकी आय बढ़ाने के लिए 14,235 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 योजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में कल सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 2,817 करोड़ रुपए की लागत वाली डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए 3,989 करोड़ रुपए की लागत वाली योजना को मंजूरी दी है। ये पहल किसानों को जलवायु परिवर्तन के लिए तैयार करेगी और 2047 तक खाद्य सुरक्षा प्रदान करेगी। सरकार ने 2,291 करोड़ रुपए की लागत से कृषि शिक्षा और प्रबंधन को भी मजबूत करने का निर्णय लिया है। इससे कृषि छात्रों शोधकर्ताओं को वर्तमान चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी। मंत्रिमंडल ने 1,702 करोड़ रुपए की लागत से पशुधन स्वास्थ्य और उसकी जनसंख्या बढ़ाने की योजना को भी मंजूरी दी। इस निर्णय का उद्देश्य पशुधन और डेयरी से किसानों की आय बढ़ाना है। तेलंगाना में बारिश और बाढ़ के कारण 16 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने वर्षा से प्रभावित खम्मम और सूर्यापेट जिलों का दौरा किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का आग्रह किया। एनडीआरएफ की टीमें बारिश प्रभावित इलाकों में बचाव अभियान चला रही हैं। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक कुछ जिलों में मध्यम बारिश की संभावना व्यक्त की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि जो संगठन उद्योग और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करते हैं वे देश के विकास में बड़ा योगदान देते हैं। राष्ट्रपति महाराष्ट्र के कोल्हापुर के वारणा नगर में श्री वारणा महिला सहकारी मल्टी इंडस्ट्री ग्रुप के स्वर्ण जयंती समारोह में बोल रही थीं। केंद्र ने कल 23वें विधि आयोग के गठन को अधिसूचित कर दिया। आयोग का कार्यकाल 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक 3 साल की अवधि के लिए होगा। आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और सदस्य सचिव सहित 4 पूर्णकालिक सदस्य होंगे। कानूनी मामलों के विभाग के सचिव और विधायी विभाग के सचिव पैनल के पदेन सदस्य होंगे। आयोग में 5 अंशकालिक सदस्य हो सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश विधि आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होंगे। भारतीय वायुसेना का एक MiG-29 लड़ाकू विमान कल रात राजस्थान के बाड़मेर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वायुसेना ने कहा कि लड़ाकू विमान में रात्रि प्रशिक्षण मिशन के दौरान तकनीकी खराबी आई, जिसके बाद पायलट को विमान से निकलना पड़ा। पायलट सुरक्षित है और जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत के सुमित अंतिल ने भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में अपना स्वर्ण पदक डिफेंड किया है। अंतिल ने अपने दूसरे प्रयास में 70.59 मीटर भाला फेंककर नया रिकॉर्ड बनाया। इसके साथ ही भारत के कुल 14 पदक हो गए हैं, जिसमें 3 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। इससे पहले बैडमिंटन में नितेश कुमार ने पुरुष सिंगल्स SL3 श्रेणी में ब्रिटेन के डेनियल बेटेल को 21-14, 18-21, 23-21 से हराकर बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता था। तीरंदाजी मिक्स टीम कंपाउंड इवेंट में शीतल देवी और राकेश कुमार को कांस्य पदक मिला है। योगेश कथुनिया ने कल पुरुषों के डिस्कस थ्रो F56 वर्ग के फाइनल में रजत पदक जीतकर भारत को 5वें दिन का पहला पदक दिलाया था। पैरालंपिक में ये उनका लगातार दूसरा रजत पदक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।